नमस्कार, सांचे विरासत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी आरजे मोनिका। सांचे विरासत के माध्यम से हम लॉस्ट इंडियन फोक आर्ट्स को एक बार फिर से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। दुनिया के महानतम चित्रकारों में शामिल स्विस जर्मन चित्रकार पॉल क्ली ने कला पर एक बातचीत में कहा था कि हम में अभी भी अंतिम शक्ति की कमी है, क्योंकि हमें संपोषित करने वाली कोई संस्कृति नहीं है। पॉल क्ली के वक्तव्य की पृष्ठभूमि अलग थी, उसका संदर्भ अलग था। बावजूद इसके उनका वक्तव्य न केवल भारतीय आधुनिक कलाओं बल्कि लोक कलाओं की वर्तमान स्थिति पर भी सटीक बैठता है। बिहार की मंजूषा कला भी उनमें से एक है। मंजूषा पेंटिंग्स। मंजूषा पेंटिंग भारत की प्राचीन लोक कलाओं में से एक है। इस कला का विशेष प्रभाव प्रदेश की पौराणिक कथाओं पर ही आधारित है, जिसमें कहानी का चित्रण किया जाता है। मंजूषा कला को सूचीबद्ध कला भी कहते हैं। ये कला बिहार के भागलपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों की कला है। मंजूषा कला अंग प्रदेश की एक बहुत बड़ी विरासतों में से एक है। बिहार की मधुबनी पेंटिंग की तरह मंजूषा कला भी है। इस कला को भी कपड़ों पर उकेरा जाता है। मंजूषा कला भारत की एक ऐसी अनोखी लोक कला है जिसमें कहानी का चित्रण किया जाता है। मंजूषा कला को सूचीबद्ध कला भी कहते हैं। ये कला बिहार के भागलपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों की कला है। मंजूषा अंग प्रदेश की बहुत बड़ी विरासतों में से एक। वैदिक इतिहासकारों की माने तो मंजूषा कला पर सिंधु घाटी सभ्यता का अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। एक अध्ययन के अनुसार ये कला प्राचीन अंग महाजनपद को इतिहास को उकेरती है। साथ ही ये पेंटिंग्स बिहुला विषहरी की कहानी को भी दर्शाती है। मंजूषा पेंटिंग्स एक ऐसी लोक कला है जो भारत के अंग क्षेत्र में विकसित हुई। इन्हें अक्सर कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। उनके चमकीले रंग और उत्कारीगरी चित्रों को अलग बनाती है। मंजूषा पेंटिंग बेहद प्राचीन कालीन पेंटिंग है जो लोगों को अपनी तरफ काफी ज्यादा आकर्षित करती है। इस कला को वैश्विक पहचान भी मिली है। इस पेंटिंग को GI टैग तो मिला, फिर भी इस पेंटिंग को विशेष पहचान ना मिल पाई। मंजूषा आर्ट इज एन एंशियंट एंड हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट आर्ट फॉर्म विच इज ऑफन रेफर्ड टू एज स्नेक पेंटिंग्स बाय फॉरेनर्स एज स्वर्लिंग स्नेक्स इन द आर्ट डिपिक्ट द सेंट्रल कैरेक्टर इन बिहुला'स टेल ऑफ लव एंड सैक्रिफाइस। मंजूषा आर्ट इज अ मैग्निफिशिएंट सागा ऑफ हाउ दिस आर्ट रिफ्लेक्ट्स द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट अंग महाजनपद। अगर हम मंजूषा कला के स्वर्णिम इतिहास की बात करें तो मंजूषा अंग प्रदेश की एक प्राचीन लोक कला है जिसे वर्तमान में बिहार में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। इस कला रूप का पता 7वीं शताब्दी में लगाया जा सकता था, लेकिन 1931 के आसपास यानी करीब 1931 से 1948 के बीच के वर्षों में ये कला फली फूली। मंजूषा पेंटिंग की उत्पत्ति प्राचीन अंग प्रदेश से हुई, जिसमें वर्तमान में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि मंजूषा कला की शुरुआत भागलपुर क्षेत्र के आसपास मौजूद वनस्पति और जीव के चित्र के रूप में हुई थी। विहुला विषहरी कहानी ये भी कहते हैं। ये कहानी बताती है कि सांप द्वारा काटे जाने पर व्यक्ति को तत्काल क्या कदम उठाना चाहिए, जो आयुर्वेद के महत्व को छूता है। पहले इस कला का निर्माण केवल दो परिवारों द्वारा किया जाता था। कुंभकार समुदाय बर्तन या कलश बनाते थे और उन्हें मंजूषा चित्रों से सजाते थे, जबकि मालाकार मंजूषा संरचनाएं बनाते थे और उन्हें मंजूषा रूपांकनों से सजाते थे। मंजूषा पेंटिंग्स 7वीं शताब्दी ईस्वी से चली आ रही है। चित्र मूलतः कुंभकार जाति जो कि व्यापार से कुम्हार थे उनके द्वारा बनाए गए थे। कुंभकारों ने विशिष्ट मंजूषा चित्रकला शैली विकसित करने के लिए अपने मिट्टी के बर्तन बनाने के कौशल का उपयोग किया। वे मिट्टी की एक पतली चादर बिछाते थे और उसे पौधों और खनिजों से बने प्राकृतिक रंगों से रंगते थे। एक लंबे समय तक चलने वाला नमूना बनाने के लिए चित्रों को भट्टी में जला दिया गया। 19वीं सदी के शुरुआत में मंजूषा पेंटिंग को मिट्टी के बजाय कपड़े और कागज पर भी चित्रित किया जाने लगा। चूंकि मिट्टी की पेंटिंग अधिक नाजुक और ले जाने में जटिल थी, इसीलिए यह स्थिति बनी। 19वीं शताब्दी में अंग क्षेत्र व्यापार और कारोबार का केंद्र बन गया। तो मंजूषा पेंटिंग की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ने लगी। क्षेत्र के तीर्थयात्री और यात्री अक्सर कलाकृति बेचते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में मंजूषा पेंटिंग का चलन खत्म हो गया। यह विभिन्न परिस्थितियों के कारण था, जिसमें पश्चिमी कला रूपों का प्रवेश और व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में अंग क्षेत्र का पतन शामिल था। मंजूषा पेंटिंग बिहुला बिशारी की कथा से जुड़ी लोक कथाओं के इर्द गिर्द घूमती है। ये चित्र बक्सों पर बनाए गए थे, जिनका उपयोग भक्तों द्वारा बिशारी पूजा के लिए अनुष्ठानिक वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता था। एक अन्य अनुष्ठान जिसमें मंजूषा पेंटिंग शामिल है, वो है जिसमें दूल्हे से सभी चार बिसहरियों को सिंदूर पाउडर या सिंदूर लगाने की उम्मीद की जाती है और उसके बाद ही वो अपनी दुल्हन के साथ मंडप में शामिल हो सकता है। विशारी पूजा के दौरान कलश और मंदिर संरचित बक्सों की पूजा की जाती है, क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है कि देवता की पूजा करने से उन्हें उनकी शक्ति और सुरक्षा मिलेगी। महिलाएं अपने जीवन साथी की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए बिहुला से प्रार्थना भी करती हैं। हालांकि हाल के वर्षों में मंजूषा पेंटिंग की वापसी देखी गई है। ये इस ऐतिहासिक कला रूप के संरक्षण और प्रचार के लिए समर्पित कलाकारों और संगठनों के प्रयास का धन्यवाद है। आइए जानते हैं कि क्या होती है मंजूषा कला, आखिर क्यों ये कला इतनी ज्यादा लोकप्रिय है और इतनी ज्यादा मैग्निफिशेंट आर्ट के तौर पर जानी जाती है। मंजूषा कला भारतीय कला का सबसे प्राचीन लोक कलाओं में से एक है। ये कला आंध्र प्रदेश की विशेषताओं को वर्णित करती है, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश की लोक कथा बिहुला बिशहरी के बारे में भी मंजूषा कला के माध्यम से बताई जाती है। इस कला में एक मोटी और लंबी लाइन का प्रयोग किया जाता है और साथ ही बालों को लाइन के माध्यम से नहीं बल्कि रंगों से दिखाया जाता है। इस कला में देवी देवताओं और अंग प्रदेश के इतिहास के साथ साथ बिहुला विषहरी की कथा को दर्शाया जाता है, जिसमें पांच जहरीली बहनों के साथ एक सांप दिखाने की परंपरा है, जहां पात्रों के बाल खुले रहते हैं। चित्रों के माध्यम से बिहुला को उसके खुले केश और उसके सामने मंजूषा यानी नाग को चित्रों के द्वारा उकेरा जाता है। इस चित्र में एक ऐसी देवी को दर्शाया जाता है जो दाहिने हाथ में अमृत कलश लिए रहती हैं। इस कला में मुख्य रूप से गुलाबी, पीले और हरे रंग को उपयोग में लाया जाता है। इस कला में जो देवी देवताओं या महिलाओं की चित्र बनाई जाती है, उसमें उनकी सज्जा का बहुत महत्व रखा जाता है। कभी कभी इस कला में हरा और नारंगी रंग के जुड़े सामान्य सहायक रंगों का भी उपयोग किया जाता है। मंजूषा पेंटिंग में केवल तीन रंगों का उपयोग किया जाता है, गुलाबी, हरा और पीला। एक महत्वपूर्ण और परिभाषित कारक इसकी सीमाएं हैं, जो पत्तियों, त्रिकोण और सांपों के पैटर्न से भरी हुई हैं। ये कला रूप मुख्य रूप से पौराणिक लोक कथाओं और रूपांकनों पर आधारित है, जैसे पद्मावती, मैना बिसाहरी, दोथिला भवानी, माया मनसा बिसाहरी, जया विशाहरी, चंदो सौदागर और कलश। मंजूषा पेंटिंग के ज्वलंत रंग और उत्कृष्ट जटिलताएं उन्हें अलग पहचान देती हैं। पौधों और खनिजों से उत्पन्न प्राकृतिक रंगों का उपयोग अक्सर चित्रों में किया जाता है, जिन्हें आमतौर पर कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। मंजूषा पेंटिंग में हरा, गुलाबी और पीला सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले रंग हैं। इन रंगों का उपयोग अक्सर आकर्षक रचनाएं बनाने के लिए किया जाता है। पेंटिंग्स अपनी विस्तृत विशेषताओं के लिए प्रतिष्ठित हैं। कलाकार अक्सर लोगों, जानवरों और वनस्पतियों का विस्तृत चित्रण करने के लिए बारीक ब्रश स्ट्रोक का उपयोग करते हैं। मंजूषा कला में तीन रंगों का उपयोग किया जाता है। मंजूषा कला में बॉर्डर का बहुत ज्यादा ही महत्व है। मंजूषा कला एक रेखा चित्र कला है, एक लोक कला है, एक स्क्रॉल पेंटिंग के रूप में भी आप इसे मान सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी ही बताया कि ये एक सूचीबद्ध कहानी कहने की कला है। मंजूषा कला पूरी तरह से बिहुला बिशारी की लोक कथाओं पर आधारित है। मंजूषा कला में पात्रों को अंग्रेजी वर्णमाला के एक्स लेटर यानी एक्स अक्षर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इस कला के प्रमुख पात्र सांप, चंपा फूल, सूर्य, चांद, हाथी, कछुआ, मछली, मैना, कमल, कलश, तीर धनुष, शिवलिंग, वृक्ष आदि हैं। इस कला के प्रमुख पात्र भगवान शिव, मनसा देवी, बिहुला, बाला, हनुमान, चंदू सौदागर मंजूषा कला की सीमाओं में आते हैं बेलपत्र, लहरिया, त्रिकोण, मोखा और सांपों की श्रृंखला। बिहुला बिशहरी की पारंपरिक कहानी मंजूषा पेंटिंग का सबसे लोकप्रिय विषय है। कथा के अनुसार बिहुला नाम की एक युवा महिला अपने पति को नाग देवता से बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान कर देती है। चित्रों में चित्रित कहानी में विशिष्ट दृश्यों में बिहुला की शादी, उसके पति की मृत्यु और उसे बचाने के लिए अंडरवर्ल्ड की यात्रा शामिल है। मंजूषा पेंटिंग बिहुला और बिशहरी की कहानी के अलावा हिंदू पौराणिक कथाओं और सामान्य जीवन की छवियों को भी चित्रित करती है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज्यादा बात हो गई बिहुला बिशहरी की, बिहुला बिशहरी की, भाई क्या है ये, क्यों सबसे ज्यादा मंजूषा पेंटिंग्स में बिहुला बिशहरी की कहानी बताई जाती है ये कहानी, तो आइए जानते हैं। बिहार के अंग प्रदेश में आज भी पौराणिक काल से चली आ रही बिहुला बिशहरी पूजा की परंपरा कायम है। बिहुला बिशहरी, जिसे कई लोग बिहुला बिशहरी भी कहते हैं, चूंकि वहां का एक्सेंट बदल जाता है, तो बिहुला बिशहरी में माता मनसा की पूजा होती है। माँ मनसा को शिव पुत्री और महादेव के गले में हार बने बैठे वासुकी की बहन बताया गया है। किसी समय में अंग प्रदेश में चंद्रधर नाग के एक सौदागर थे। वे चंपानगर के बहुत बड़े व्यवसायी थे, साथ ही साथ वो एक शिव भक्त भी थे। बिशहरी, जो भगवान शिव की पुत्री कही जाती हैं, उन्होंने चंद्रधर पर दबाव बनाया कि वे शिव की पूजा ना करें बल्कि उनकी पूजा करें, लेकिन चंद्रधर इस बात से राजी नहीं हुए। इसके बाद गुस्से में बिशहरी ने सौदागर के पूरे परिवार को खत्म करना शुरू कर दिया। सौदागर के छोटे बेटे, जिनका नाम बाला लखेंद्र था, उसकी शादी बिहुला नाम की एक लड़की से हो गई। मंजूषा पेंटिंग एकमात्र भारतीय कला है जिसमें अनुक्रमिक प्रतिनिधित्व है। मंजूषा कला बिहार के भागलपुर की एक लोक कला है। इस कला रूप को जनता के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए दी सर्प कम्युनिटी ने अनुश्री दत्ता के साथ सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कला पर एक आकर्षक कार्यशाला का आयोजन किया था। अनुश्री एक डिजाइनर और भावुक लोक कलाकार हैं, जो जर्मनी में स्थित हैं। लोक कलाओं के प्रति उनका प्रेम ही उन्हें उनकी भारतीय जड़ों से निकटता से जोड़े रखता है। उन्हें भारतीय सांस्कृतिक कलाओं को बढ़ावा देने के लिए फोक ट्रेंड नाम से अपना उद्यम शुरू किया है। कार्यशाला की शुरुआत अनुश्री और कला की दुनिया में उनकी यात्रा के संक्षिप्त परिचय के साथ हुई थी। अनुश्री ने मंजूषा कला का इतिहास समझाना शुरू किया और बिशहरी की पौराणिक कहानी भी सुनाई। उन्होंने अपनी एक रचना दिखाई जो कि शिवलिंग मंजूषा कला थी, और उन्होंने हरे रंग से शिवलिंग का बॉर्डर बनाना शुरू कर दिया। वह खूबसूरती से डिजाइन बनाती रहीं और पृष्ठभूमि को गुलाबी और पीले रंग से रंगती रहीं। सभी प्रतिभागियों ने मंजूषा कला के बारे में सीखने और विभिन्न डिजाइनों की अपनी कलाकृतियां बनाने में बहुत अच्छा समय बिताया, जो सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन और देखने में सुंदर थी। अनुश्री सभी कलाकृतियां देखकर प्रसन्न हुई और प्रतिभागियों की सराहना की। उपस्थित लोग देश के विभिन्न हिस्सों से थे, वे भी अलग अलग आयु वर्ग के थे, लेकिन कला के प्रति उनका प्रेम उन्हें एक मंच पर ले आया। सर्कल समुदाय हमेशा की तरह कलाकारों को जोड़ने और एक जादुई और सकारात्मक माहौल तैयार करने में सफल रहा। मंजूषा पेंटिंग्स कई कारणों से उल्लेखनीय है। शुरुआत के लिए वो एक विशिष्ट और उत्कृष्ट कला रूप है जो अंग क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। दूसरा ये कि पेंटिंग क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण है। कलाकृतियां अक्सर धार्मिक आयोजन और त्योहार पर प्रदर्शित की जाती हैं। तीसरा, पेंटिंग अंग क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति का एक आवश्यक रिकॉर्ड है। ये पेंटिंग दैनिक जीवन के साथ साथ हिंदू पौराणिक कथाओं की घटनाओं को दर्शाती है। मंजूषा पेंटिंग अंग क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में प्रमुख है। कलाकृतियां अक्सर धार्मिक आयोजनों और त्योहारों पर प्रदर्शित की जाती हैं। उदाहरण के लिए मंजूषा पेंटिंग का उपयोग बिशहरी पूजा में किया जाता है, जो नाग देवता को समर्पित त्योहार है। अन्य धार्मिक आयोजन जैसे बपतिस्मा में भी छवियों का उपयोग किया जाता है। इससे पहले कि मंजूषा कला के वर्तमान पर चर्चा की जाए, बात जगदीश स्वामीनाथन की, जिन्होंने भारतीय लोक कलाओं को आधुनिक कलाओं के समकक्ष देखा और उन्हें समान रूप से प्रोत्साहन भी किया। स्वामीनाथन ने भी पॉल क्ली के उपरोक्त वक्तव्य का उद्धरण देते हुए अपने लेख अस्मिता और प्रासंगिकता में लिखा कि भारत का आधुनिकतावादी आंदोलन पाश्चात्य आंदोलन के ही पीछे पीछे गया है। कभी कभार भारतीय परंपरा को खोजने तथा उस पर बल देने के अंध देशभक्त पूर्ण प्रतिक्रियाएं हुई हैं, किंतु ऐसे प्रयास एक वास्तविक दृष्टि के खुलने के कार्य में पूरी तरह से नुकसानदेह और व्यर्थ ही रहे हैं। स्वामीनाथन आगे कहते हैं कि परंपरा की कर्मकांडी समझ ने हमारे चित्रकारों की नकली आधुनिकता को मजबूत किया है। बेशक इसमें बाजार का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर विकास के दूसरे क्षेत्रों में भी समान बात देखी गई, जो विचारधारा आधुनिक तकनीकी सभ्यता में चली आ रही है उसे कमोबेश सबके लिए जायज मान लिया गया। लगभग 3 दशक पूर्व स्वामीनाथन ने आधुनिक और लोक कलाओं की तत्कालीन परिस्थितियों पर टिप्पणी की थी। उनकी टिप्पणी मंजूषा कला को लेकर नहीं थी, संभवतः उनकी टिप्पणी में छुपी चिंताओं की परिधि में आधुनिक कलाएं और मध्य प्रदेश की लोक कलाएं रही हों। परंतु क्या उन चिंताओं की परिधि से बिहार की लोक कला, विशेषकर लोक चित्रकला का वर्तमान बाहर है? परंपरा के कर्म कांडी समझ ने लोक कलाओं में जिस नकली आधुनिकता को मजबूत किया है, जिसमें बाजार की कड़ी भूमिका है, क्या उसकी छाया मंजूषा और मधुबनी कला पर नहीं दिखती है? स्वामीनाथन जिसे भारतीय आधुनिकतावादी आंदोलन की प्रवृत्ति कह रहे थे, क्या उस प्रवृत्ति से बिहार की लोक कलाएं अछूती हैं? स्वामीनाथन के कथन में 4 तत्वों की प्रधानता है। पहला, परंपरा की कर्मकांडी समझ। दूसरा, चित्रकारों की नकली आधुनिकता जिसे भारत के आधुनिकतावादी आंदोलन की प्रकृति के नजरिए से देखने की जरूरत है। तीसरा, बाजार की भूमिका। और चौथा, वो विचारधारा जिससे आधुनिक तकनीकी सभ्यता संचालित होती है। मैं मंजूषा कला की वर्तमान को इन्हीं 4 तत्वों को ध्यान में रखते हुए अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ अपनी बात। किसी भी कला विधा के वर्तमान पर लिखना अत्यंत जोखिम भरा कार्य है, खास तौर पर तब जब उसमें सरकार, गैर सरकारी संस्था, गैलरी और पूंजीपति का निवेश लगातार बढ़ रहा हो। ये जोखिम तब और बढ़ जाता है जब उसकी जिम्मेदारी एक युवा लेखक पर हो। इसीलिए मंजूषा कला के वर्तमान पर लिखने से पूर्व मंजूषा कला के वरिष्ठ कलाकारों, विशेषज्ञ, अंग क्षेत्र के विद्वान और उसे प्रोत्साहन दे रहे समाज सेवियों से विस्तार से बातचीत करना जरूरी है। उस बातचीत में उन्होंने मंजूषा कला के वर्तमान को लेकर अपनी चिंताएं स्पष्ट रूप से व्यक्त की, और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि हमें अपनी कलाओं की सार्थकता और अर्थहीनता का परीक्षण तटस्थ रूप से करना होगा, तभी हम उसके वर्तमान को भी ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। मंजूषा कला के वर्तमान की चर्चा से पूर्व उसके विषय वस्तु पर चर्चा करना आवश्यक है, इससे परंपराओं की कर्मकांडी समझ का रहस्य भी खुल सकेगा। मंजूषा चित्रकला के मूल में बिहुला विषहरी की लोक गाथा है, ये हमें मालूम हो चुका है, जिसके मुताबिक शिव की 5 मानस पुत्रियां जो नाग कन्याएं हैं, पृथ्वी पर पूजित होने के उद्देश्य से चंपानगर के शिव भक्त चांदो सौदागर के समक्ष उपस्थित होती हैं। चांदो उनकी पूजा से इनकार करता है और उन्हें अपमानित करता है। इससे गुस्साई नाग कन्याएं, जिन्हें विषहरी कहा जाता है, वो चांदो को श्रीहीन, संतानहीन कर देती हैं। इसी क्रम में चांदो की सबसे छोटी बहू बिहुला अपने कोबर घर में ही विधवा हो जाती है। वह अपने पति बाला लखेंद्र को जीवित करने का संकल्प लेती है और विषहरी की ही मदद से अपना संकल्प पूरा करती है। बिहुला के प्रण से विवश हो और महादेव की प्रेरणा से चांदो सौदागर बाएं हाथ से विषहरी की पूजा करता है। इस प्रकार विषहरी बहने पृथ्वी लोक में पूजित होती हैं। इस लोक गाथा के विविध प्रसंग तथा सोनदह तालाब और विषहरी, पार्वती से विषहरी का परिचय, विषहरी का महादेव के सम्मुख जाना और पृथ्वी पर पूजा पाने की लालसा व्यक्त करना, महादेव का उन्हें चांदो के पास भेजना, चांदो का विषहरी को अपने दंड से डराना, विषहरी द्वारा चांदो का श्री संतान हीन करना, बाला और बिहुला का विवाह, ओबर घर में मनियार नाग द्वारा बाला का दंश, बाला की मृत्यु पर विलाप करती बिहुला, मंजूषा में बाला के शव के साथ बिहुला का इंद्रासन गमन, गोदा घटवार द्वारा बिहुला के संकल्प में खलल, बिहुला टुंडी राक्षसी का मिलना, टुंडी राक्षसी के हाथ में बच्चा और हड्डी, मैना विषहरी का आना, विषहरी बहनों का अपने अपने प्रतीकों के साथ दिखना, इंद्रासन में नृत्य करती बिहुला और चांदो द्वारा विषहरी की पूजा आदि की कथाएं और उसका कर्म कांड मंजूषा चित्रों पर उतरते रहते हैं। अपने मिटके वित्तीय और कर्मकांडीय स्वरूप में मंजूषा कला सर्प पूजा और अनुष्ठानिक अभिव्यक्तियों से जुड़ा है। भारत में ज्यादातर लोक कलाएं कभी मिथक के रूप में तो कभी अनुष्ठान के रूप में प्रकट होती हैं। इनका भारत की श्रमशील कृषक समाज से गहरा संबंध होता है और उसी संबंध की वजह से अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति के बावजूद उनकी प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों में अनेक समानताएं मिलती हैं। इनमें प्रधान है तीन मूल रंगों की उपस्थिति। मूल रंग यानी गुलाबी या लाल, पीला और हरा, मंजूषा में इन्हीं का प्रयोग होता है। हालांकि मंजूषा कला के वरिष्ठ साहित्यकार जेसी शर्मा लोक कला में नीले रंग की उपस्थिति भी साबित करते हैं, जिस पर अंगिका के साहित्यकारों के मध्य अभी तक विवाद जारी है। मंजूषा कला में रंगों व आकृतियों को अपनी प्रतीकात्मकता है। ये आम तौर पर माना जाता है कि लाल या गुलाबी उत्सव का प्रतीक है, पीला रंग विवाह का प्रतीक है और हरा रंग विषदंश का प्रतीक है। इनके प्रतीकार्थ अनेक हैं। हरा रंग वंश वृद्धि का भी प्रतीक है। आकृतियों या पात्रों में बिहुला अक्सर खुले केश में दिखती है, उसके समक्ष एक सर्प होता है। विषहरी बहनें अपने नाम रूप प्रतीकों के साथ चित्रों पर उतरती हैं। विषहरी के रूप में मन के पंच विकारों की प्रतीकात्मक भी सामने आती है। पंच विकार यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद। मंजूषा चित्रों के बॉर्डर लहरिया आकृतियों से बनाए जाते हैं, जो बहुधा सर्प की लड़ियां होती हैं। इन्हें उपनाती गंगा या समुद्र माना जाता है। लोक गाथा में प्रयुक्त इन प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियों को पूरा मनोयोग से मंजूषा की सबसे चर्चित चित्रकार चक्रवर्ती देवी ने कागज पर उतारा और आज उनमें थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ उन चित्रों की असंख्य अनुकृतियां बनाई जा रही हैं। उन अनुकृतियों को देखकर मंजूषा चित्रकार और कला समाज इस कदर मंत्रमुग्ध है कि इस विषयों व पात्रों के संयोजन तथा प्रतीकों में जरा भी फेरबदल उन्हें उत्तेजित कर देता है। यथास्थितिवाद से इतर कुछ कलाकारों ने नए विषयों को भी अपने चित्रों पर जगह दी है या देने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से ज्यादातर प्रयोग बाहरी प्रभाव में है। ये उस प्रभाव का ही असर है कि कलाकार अब अंगराज कर्ण की गाथा पर आधारित चित्र बना रहे हैं, तो विष्णु का विश्व रूप भी मंजूषा शैली में कागज पर उतरने लगा है धीरे धीरे। मंजूषा कला में आ रहे इन बदलावों पर अंगिका के साहित्यकार डॉक्टर अमरेंद्र कहते हैं, जो गतिशीलता का विरोधी है, परिवर्तन का विरोधी है, वो मृत्यु का पक्षधर है, जड़ता का समर्थक है। लहसुन माली ने जब पहली बार मंजूषा पर चित्रों को उभारा होगा, तब बेशक विषय वे ही होंगे जो आज भी हैं, लेकिन चित्र हूबहू ऐसे ही रहे होंगे, मुझे ऐसा मानने में संकोच है। नए कलाकारों को उन संदर्भों के बारे में ज्ञान नहीं है जो उन्हें नया गढ़ने के लिए प्रेरित करे। ये चिंता मंजूषा गुरु मनोज पंडित के इन शब्दों में स्पष्ट झलकती है कि वरिष्ठ एवं युवा कलाकार बिहुला विषहरी लोक गाथा की कथानक पर नवीन अवेशर करें, आकृतियां गढ़ें, नए बिंब और प्रतीक का निर्माण करें। आज जरूरत इसी बात की है। उपरोक्त दोनों ही कथनों के आलोक में लोक कलाओं के जानकार और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में प्रदर्श कला के प्राध्यापक रहे ओम प्रकाश भारती कहते हैं, इसका दायित्व किसका है, इसकी जवाबदेही किसकी है? फिर क्या वजह है कि मंजूषा कला के विद्वत्व जन अपनी चित्र कला की दुर्दशा देखने पर विवश हैं? क्या ये बेहतर नहीं होता कि वे मंजूषा कला और परंपराओं पर विमर्श करते, जिसका लाभ युवा कलाकारों को मिलता? इससे वे मंजूषा कला में नवीन प्रतीक की रचना कर पाते। वर्तमान में रचे जा रहे मंजूषा चित्रों के संदर्भ में मुझे मंजूषा कला के वर्तमान का सत्य वही दिखता है जिसकी तरफ ओम प्रकाश भारती इशारा कर रहे हैं। वो इस रूप में भी है, मंजूषा चित्रों में प्रतीकात्मकता ठहरी दिखती है, बिंब ठहरे दिखते हैं। मिथिला कला की वर्तमान प्रवृत्तियां आज मंजूषा कला को अपना ग्रास बनाने पर आतुर है। यही वजह है बाजार उनके बीच भेद नहीं करता है और मंजूषा चित्रकला का मिथिला चित्रकला के छाया चित्रों में रूपांतरण हो जाता है, किसी को विचलित नहीं करता है। वरिष्ठ कलाकारों और कला मर्मज्ञों के बीच यह वाद विवाद का विषय नहीं बनता कि किस कला का समकालीन हो जाना और बाजार के बनाए मानदंडों पर रची जा रही है कला एक ही विषय है या अलग अलग, या किसी लोक कला के समकालीन हो जाने का अर्थ समकालिक नवीन प्रतीकों, बिंबों की रचना व उनका प्रयोग नहीं है। जिनके जरिए एक लोक कलाकार अपने अपने समय और समाज से ज्वलंत प्रश्न करता है, उनके समक्ष नवीन चुनौतियां प्रस्तुत करता है। वे प्रश्न चाहे आर्थिक विषमताओं से उपजते हों या जातीय, धार्मिक। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि सरकार के समक्ष कला नीति का अभाव और उसके साथ साथ शिक्षा नीति में अभी भी कला का अभाव। ऐसे में यक्ष प्रश्न ये भी है कि मिथिला कला के लोक ने तो उसे कला और शिल्प रूप में स्वीकार कर लिया है, अंग क्षेत्र का लोक मंजूषा को बतौर कलाकार कितना स्वीकार करता है, और जो लोग इस लोक कला के रूप में स्वीकार करता है उसका स्वीकार कहीं जातीय व वर्गीय मानसिकता के क्षेत्रीय की खोल में तो लिपटा नहीं है। ये प्रश्न करना जरूरी है क्योंकि लोक कलाओं का वर्तमान इसकी गवाही देता है कि जब लोक कलाओं ने क्षेत्रीयता के दायरे से बाहर झांकने की कोशिश नहीं की, उनका दृष्टिकोण व्यापक नहीं हुआ है, उन्हें पहचान नहीं मिली है। गैर सरकारी संगठन दिशा, ग्रामीण विकास मंच और नाबार्ड ने इस लोक शिल्प को पुनर्जीवित और संरक्षित करने के लिए भागलपुर के सभी 16 ब्लॉकों में 3 साल का मंजूषा कला विकास कार्यक्रम शुरू किया था। इस कार्यक्रम के तहत 50 गतिविधि आधारित समूह और बड़े पैमाने पर मंजूषा शिल्प विकसित किए गए हैं। एक तरीके से संरक्षण हो रहा है नाबार्ड के जरिए, और हम अपने अपने लेवल पर सारी की सारी आर्ट फॉर्म्स जो कि बेहद मैजिकल हैं, बेहद मैग्निफिशेंट हैं, उन्हें सांझे विरासत के माध्यम से संरक्षित करने का एक प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू।